जिसको प्रकृति कहते हैं, जो बुद्धि का भी कारण है, उसके परमाणु इतने सूक्ष्म है कि बुद्धि के द्वारा भी ग्रहण करने में नहीं आती, और सारी बातों को बुद्धि समझ जाती है, पर अपने परे की जो दो चीज है उसको बुद्धि, उसके असली स्वरूप को बुद्धि नहीं समझ सकती। बुद्धि उसमें प्रवेश होकर के, शामिल होकर के और उस चीज को बुद्धि ऐसा समझती है। जैसे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीन गुण है, इन तीनों गुणों की जो साम्यावस्था है वो प्रकृति है, और जो भिन्न अवस्था है तब गुण है। तो इन गुणों को किसी के साथ में जोड़ने से ही ये गुण समझ में आते हैं, और इनका जो केवल जो स्वरूप है वो बुद्धि के द्वारा समझ में नहीं आता। हम लोगों की बुद्धि के बीच के वहां जो एक ज्ञान है, चेतनता है, जो सतोगुण को कार्य है, जिसको हम लोग प्रकाश कहते हैं, नेत्रों को प्रकाश, बुद्धि के भीतर के बीच में जिसको हम एक चेतनता कहते हैं, कि एक आदमी सहन करता है तो वहां बुद्धि विलीन है, गाढ़ निद्रा में सुत्या हुआ है तो उसकी बुद्धि प्रकृति के वहां विलीन है। सपने में तो मन बुद्धि रहते हैं, किंतु गाढ़ निद्रा के समय में, सुसुप्ति अवस्था में मन बुद्धि उसमें विलीन हो जाते हैं अपने कारण के वहां, तो उसको मोह कहते हैं, मोह है। तो वो मोह क्या है, कि वो तमोगुण का कार्य है, और जितनी जो चेष्टा है, क्रिया बाहर की नहीं, भीतर की क्रिया, बाहर की क्रिया भी प्रवृत्ति मात्र समझो कि रजोगुण कोई स्वरूप है, पर वो मोटो स्वरूप है रजोगुण को, रजोगुण को वो सूक्ष्म एक प्रकार से स्वरूप कह जा सके, समझाने के लिए नहीं, स्वरूप रजोगुण को ऐसा समझा नहीं जा सके। अपने हृदय के मां जो फूरना हुए है, कोई भी बात के वास्ते अपने मन में प्रवृत्ति हुई कि यहां से ऊपर चलो, या एक मन के मां संकल्प हो, तो मन में एक प्रवृत्ति, वही मानसिक जो सूक्ष्म प्रवृत्ति, वो रजोगुण को कार्य है। इस वास्ते बने कार्य होने से रजोगुण कह दो, किंतु रजोगुण को ऐसा स्वरूप नहीं है, तो यही कह जा सके, कार्य से ही वह कारण समझाया जा सके। तो अपने शरीर के भीतर में जो चेतनता है, प्रकाश है, ज्ञान है, विवेक है, समझ है, ये सतोगुण को कार्य है। अपने हृदय का मां और जो ये पूर्णा है, संकल्प है, जैसे वो मोटे रूप में मन बनी, तो तीसरी पीढ़ी में आकर के मन बने है। बुद्धि के भीतर के बीच के मां जो क्रिया है, वो क्रिया है, वो रजोगुण है, और बुद्धि के भीतर के बीच में जो मोह है, निद्रा को जो अंश है, आलस्य है, ये तमोगुण को कार्य। तो कार्य से उस कारण को समझाया गया, यो बको रूप है, यो नहीं कह जा सके, और कार्य ने बको रूप कहे तो कोई हर्ज नहीं है। बर्फ जल को कार्य है, इस वास्ते बर्फ ने कोई जल कह देवे तो कोई दोष नहीं है, जल से वो बर्फ बनी है, जल ही बर्फ के रूप में आए हुए। इसी प्रकार से थी सत्र स्तंभ तीनों गुण का जो कार्य है, उससे उन्होंने गुण में समझाया, और गुण भी खुद प्रकृति को कार्य है, क्योंकि भगवान कहते गुणा प्रकृति संभवा, गुण ऐसो प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, तो प्रकृति ऐसो खुद गुणों से भी सूक्ष्म है। दूसरे सिद्धांत वाले मानते हैं कि उनकी साम्यावस्था ही प्रकृति है, वह प्रकृति एक सत्र स्तंभ तीन गुणों के बीच के में परिणित होती है, चाहे यूं कह दो। प्रकृति का जो परमाणु संस्कार उस गुण से भी सूक्ष्म है, और उससे भी सूक्ष्म जो है आत्मा है। आत्मा का, आत्मा की सूक्ष्मता विलक्षण है। प्रकृति तक जो आपने बताया वहां तक तो एक प्रकार से ये सब पदार्थ जड़ है, और प्रकृति से और आगे चेतन में आए जीवात्मा में, तो यहां एक प्रकार से यहां अब चेतनता जब आ गई तो चेतन को परमाणु के रूप में नहीं कह सकते। प्रकृति तक समझो कि परमाणु आप कह सकते हो, फिर भी समझाने के लिए जैसे व्यष्टि प्रकृति समष्टि प्रकृति, जीव की जो प्रकृति है वो व्यष्टि है, और प्रकृति का ही मोटा रूप जो है स्वभाव है। इस वास्ते स्वभाव और प्रकृति दोनों एक ही चीज है, कोई अलग नहीं है। समझाने के वास्ते या उसको पर्याय भी कह सकते हो कि प्रकृति कह दो चाहे स्वभाव कह दो, तो एक तो जीव को स्वभाव है, एक ईश्वर को स्वभाव है। तो ईश्वर को जो स्वभाव है वो तो समष्टि है, जीव को सुष्टि है। ईश्वर की प्रकृति और जीव की प्रकृति, तो जीव की प्रकृति है वो दूषित होती है, ईश्वर की प्रकृति है शुद्ध है। तो प्रकृति को फर्क हो गया ना, इस वास्ते में विभाग हो गए। और जीव ऐसो नाना है, और जीवात्मा बहुत है, और परमात्मा एक ही है। तो जीवात्मा की जो एक प्रकार से नाना संज्ञा है वो शरीर के संबंध से है, और शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों ही शरीर जो है वो प्रकृति का विकार है, प्रकृति का कार्य है। समझाने के वास्ते बताया जाता है, किंतु जड़ के द्वारा चेतन को समझाना बहुत ही कठिन है। जैसे आकाश है निराकार है, और आकाश के मां बादल है वो साकार है, तो बादल की जो तो शरीर समझो, और आकाश की जो आत्मा समझो, तो एक बादल का जो टुकड़ा, उस एक बादल के टुकड़े के बीच के मां जल के करोड़ों परमाणु हो सके, जल के परमाणु जो करोड़ हो सके एक इंची में, इंची भर के बादल के टुकड़े में करोड़ों परमाणु ऐसे जल के हो सकते हैं। वो जल के परमाणुओं का समूह ही बादल है, उसका एक एक परमाणु जो है सो अपना अपना अलग है, अपने सो सता रखे। तो एक जो जल को परमाणु है वो भी तो आकाश में है ना, तो आकाश को एक उसे विभाग नहीं, अविभक्ति है आकाश। किंतु वे जल का नाना परमाणु मान ले वहां, तो वे समझो कि लाखों करोड़ों परमाणु जल के जो जिस आकाश में है अपने अपने स्थान पर, वो आकाश का स्थान उसके साथ में संबंध रखे। ऐसे आकाश की जो अनंत जो चेतन जो सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म जो परमात्मा है, उसमें इनका जो कारण जो शरीर है वो एक परमाणु की जो वो कारण शरीर ही फिर सूक्ष्म बने, सूक्ष्म से ही स्थूल बने। सूक्ष्म शरीर के 17 तत्व माने गए हैं, 10 इंद्रियां और 5 प्राण और मन और बुद्धि, ये 17 तत्व है। अहंकार बुद्धि के अंतर्गत है, इस वास्ते उसको अलग नहीं लिया। इस 17 तत्व का समूह है वो सूक्ष्म शरीर है, जो इस शरीर से निकल दूसरे शरीर में जाता है, दिखता नहीं, वो हवा से भी सूक्ष्म है, इस वास्ते वो नहीं दिखता। प्राण जो है मैं को हवा की जो स्वरूप है, तो हवा भी नहीं दिखती, और वो तो एक प्रकार से कारण शरीर तो इन सब से सूक्ष्म है, मन बुद्धि से उससे सबसे। तो ऐसा जो
ईश्वर की जो माया प्रकृति स्वभाव उसका एक प्रमाण इस चेतन के साथ में संबंध है, वो दोनों मिलकर इसकी जीव संज्ञा है। अलग अलग किया जावे तो वो कारण शरीर है और वो एक प्रकार से शुद्ध चेतन आत्मा है। शुद्ध चेतन जो आत्मा है उस अंश को तो कहते हैं कूटस्थ व्यष्टि चेतन, और उसका व्यष्टिपन उस कारण शरीर के संबंध से ही है, नहीं तो उसका विभाग हो नहीं सके। तो कारण शरीर के साथ में जो चेतन है व्यष्टि चेतन, पर दोनों मिलकर उसको जीव कहते हैं, जीवात्मा उसका नाम। कारण शरीर के संबंध रखता हुआ जीवात्मा का जो स्वरूप है उस का वर्णन शास्त्रों में श्वेत उपनिषद आदि में बतलाया है कि अपने जैसे शरीर का जो एक रोम है, रोम का अगला भाग अगला हिंसा, रोम का अगला हिंसा और उसका फिर हजार टुकड़ा हुए, इस तरह से मैं कुछ जीव की प्रमाण माने हूं। तो वो जीव को जो सूर्य के माने हो कि इस प्रकार सूक्ष्म है कारण शरीर जीव को, वैसे ही वह को विभाग हो सके, तो ऐसो सूक्ष्म है सो अणु को भी, वो अणु जिक्र जीवात्मा का, तो जीवात्मा को तो विभाग हो नहीं, वो तो कोई बतला नहीं सके, किंतु वो कारण शरीर को एक विभाग हो, मैं के विभाग से थी मैं की जीव संज्ञा कर करके के और मैंने व्यष्टि चेतन संज्ञा करी, तो वह व्यष्टि चेतन और वो कारण शरीर दोनों मिलकर के मैं की संज्ञा हुई जीवात्मा, मैंने अलग कर दिया जावे समझ तोड़ दिया जावे तो वो तो प्रकृति के वहां मिल जावे और वो परमात्मा मिल जावे। आत्मा जो है वो तो परमात्मा कौन सा है, ममई मांसो जीव लोके जीव होते सनातन है। 15वें अध्याय के 7 के श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान कहते हैं कि ये जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और इसका जो शरीर है वो प्रकृति का अंश है, तो दोनों मिलकर के ही सृष्टि की उत्पत्ति हुए। अब आपको ये दूसरी बात बताई जाती है परमाणुओं के विषय में, प्रातःकाल पीछे चले आप परमाणु का, तो वो उसका मूल जो कारण मूल जो तत्व समझाने से वह बात समझ में ठीक आवे, इसलिए यह सब भूमिका आपको बताई। और ईश्वर जो परमात्मा ब्रह्म उसका तो समझो कि वो तो परमाणु तो जड़ है, वो तो उन सब से रहित है, फिर भी वो कहा जाए वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तर है, ये इसलिए बताया जाता है कि वो मैं की सूक्ष्मता ने कोई दूसरों बुद्धि के द्वारा भी नहीं जान सके, और फिर भी जो बुद्धि के द्वारा परमात्मा को स्वरूप जो जानने में आवे सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तर, वो बुद्धि से मिले हुए परमात्मा को स्वरूप जानने में आए, और केवल जो शुद्ध है बुद्धि से जो अलग है रहित है वो समझ नहीं आ सके, बुद्धि की सामर्थ्य नहीं बन सके, तो बुद्धि ग्राह्य। और मैं कोई वर्णन क्यों जावे वाणी के द्वारा शास्त्र में वेदों के मां कि सत्यम ज्ञानंतम ब्रह्म विज्ञानानंद ब्रह्म, ये सब जो वर्णन क्यों जावे ब्रह्म को, मैं को वर्णन क्यों जावे जो बुद्धि के समझ में आ सके, यानी बुद्धि से मिले हो बुद्धि मिश्रित बुद्धि अवशिष्ट ब्रह्म को जो स्वरूप है, उसी के लिए भगवान गीता में कहे ज्ञेयं यत् तत्परवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमस्मृते, मैं जानने में आने वाला जो परमात्मा का स्वरूप है जिसका नाम ज्ञेय है वो तेरे को मैं कहूंगा, जिसको तू जान करके अमृत को प्राप्त हो जाएगा। अमृत के नाम से जो बात कही गई है वो ब्रह्म का शुद्ध केवल स्वरूप है, निर्विशेष स्वरूप है, निर्गुण निराकार है, और बुद्धि के ग्रहण करने में आवे वो निर्गुण निराकार नहीं है, वो सगुण निराकार। ये जो यहाँ वर्णन है कवि पुराण मनुष्य सितार है, ये जो बताया हमें अभी 8वें अध्याय का 9वां श्लोक है, ये एक प्रकार सगुण निराकार जिसको अधिक के नाम से कहा गया।
अरे निर्गुण निराकार को किस नाम से कहेगा? अक्षरंग ब्रह्म परम, अक्षरंग ब्रह्म परम, परम जो अक्षर है वो ब्रह्म है, क्षर माने जो खे हुए, अक्षर जो कदे विनाश को नहीं हुए, पतन को नहीं हुए, अभाव को नहीं हुए, अदृश्य को नहीं हुए, वो सदा सर्वदा अपना एक रस एक रूप के मां सदा ही मौजूद है, वो सो अक्षर है। और मैंने परम इस वास्ते कहो, जीवात्मा को नाम भी तो अक्षर है, दुआ भी वो पुरुषो लोके अक्षर एवच है, क्षरवाणी भूतानी कूटस्तोक्षर उच्यते, संसार में दो पुरुष एक क्षर और एक अक्षर, तो सारे भूत प्राणी वो तो अक्षर है, जीवात्मा वो अक्षर है, तो इस वास्ते परम अक्षर। जीवात्मा के अक्षर परम अक्षर उसमें फर्क है, केवल फर्क है कि जब जीवात्मा ब्रह्म में प्राप्त हो गया है तो वह को जीवात्मा को जीवात्मा प्रण नहीं रहे, वस्तु तो वह है पर वह वस्तु अपने आत्मा जीवात्मा परमात्मा के रूप में बदल जावे, जना वो अक्षर से परम अक्षर हो जावे, तो इस वास्ते वो परम अक्षर है। और इसमें खय क्या हो कि इनको शरीर के साथ में समुद्र भी छेद होने इसको खय होना हो, वह खय होने वाली चीज तो इसके साथ में थोड़ी थी क्या शरीर, जीवात्मा को तो खय हुए नहीं, आत्मा को तो खय हुए नहीं, और वह मैं जीव भाव थो के समुद्र से समझा, मैं समुद्र भी छेद हो, तो वो एक प्रकार से आपने वह खय होने वाली चीज थी, और ब्रह्म के बीच में कोई खय होने वाली चीज नहीं थी, इस वास्ते उसको परम अक्षर कह रहे, वो निर्विशेष, उसी को नाम निर्विशेष ब्रह्म है, उसी को नाम निर्गुण ब्रह्म है, उसी को नाम परम अक्षर है। तो जो आपने सगुण जो परमात्मा को स्वरूप है, मैंने सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तर कह जा सके, इसलिए कि समष्टि बुद्धि जो कहे उससे या उसकी ईश्वर की जो प्रकृति कही जाए उससे संबंध है, शुद्ध जो ब्रह्म है वहां तो न प्रकृति है न कोई अपना समष्टि बुद्धि है कुछ भी, तो इसलिए जो अधियज्ञ है वो सगुण है निराकार है, और परम जो अक्षर जो है वो निर्गुण है निराकार, निर्गुण भी है निराकार भी है, निराकार होकर के गुणा से अतीत है, निराकार तो और बहुत सी चीजें हैं, प्रकृति है वो भी निराकार है, जीव है वो भी निराकार है, बहुत सी चीजें हैं निराकार, मन बुद्धि है ये भी निराकार है, पर आपको व्यक्तित्व पकड़े जाओ है, इसलिए निराकार होकर के भी इससे भी और बढ़ करके निराकार वो चीज है जो पकड़ी नहीं जा सकती। अब आपको और सब परमाणुओं की बात बतलाई जावे, अर्थ का अपने सिद्धांत बतला दियो, जिससे आप समझ सको कि भी ये परमाणु की चीज है, परमाणुओं को समूह ही अनुपम है, जिसके बीच के वहां इतनी शक्ति भरी जावे कि जिससे हजार आदमियों को विनाश कर डाले। अब ख्याल करना चाहिए, अब जो ये विषय है परमाणुओं को, इनको तो बड़ो विस्तार है, ये कोई दो चार मिनट में नहीं कह जा सकते, वो तो कम से कम इसके लिए एक घंटा की तक। तो ये आपने एक सिद्धांत बतला दिया, संसार में जितने पदार्थ है सबके परमाणु, जड़ जो प्रकृति है उसी का जो सूक्ष्म से सूक्ष्म जो एक प्रकार से परमाणु है वो आपने बुद्धि का परमाणु है, और बाकी उसके बाद जितने जो परमाणु है वो उससे मोटा वो उससे सूर वो उससे सूर वो ऐसा परमाणु, जितनी बीमारियां हैं उनके सबके परमाणु हैं, जितना जो स्वभाव है उन सबके परमाणु है, कर्मों की क्रिया के सब परमाणु है, पदार्थों के सब के परमाणु है, भावों के परमाणु, हृदय के जो भाव है वो एक हृदय में स्थित वो हृदय के भावों के परमाणु है। भाव के भी दो भेद है, मोटे दो भेद, त्रिभाव और सद्भाव, क्षमा, दया, शांति, समता, संतोष, सरलता, ये जितने जो उत्तम उत्तम जो गुण है वो सद्भाव रूप परमाणु है। और दुर्भाव क्या है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, जितने जो दुर्गुण है ये दुर्गुण रूप अपने परमाणु है। ऐसे ही क्रिया रूप परमाणु, क्रिया के भी अच्छे और बुरे दोनों भेद है, जिसको हम पाप कर्म कहते हैं वो बुरी क्रिया है, जिसको हम शास्त्रविद कहते हैं वो सात्विक क्रिया है। तो ये सब जो समझो कि यज्ञ है, दान है, तप है, सेवा है, तीर्थ है, व्रत है, ये इत्यादि के जो आपने तीर्थ करना, व्रत करना, करना जिसके साथ में लाग जाए वो क्रिया हो जाए। ये बाहर की क्रिया, और भीतर की क्रिया मानसिक क्रिया हो जिससे संकल्प विकल्प है, तो ये क्रिया है। पर ये मन की क्रिया है, ये मानसिक प्रमाण, और भाव को भाव है ये बुद्धि के प्रमाण, ये सूक्ष्म प्रमाण बुद्धि के प्रमाण। तो गुण युक्त, भाव युक्त, क्रिया युक्त, पदार्थ युक्त, ये सब अलग अलग परमाणु। और सब जितने पदार्थ है, तो इसी प्रकार से थी ये प्रकृति जो है जड़, उसका मोटा रूप आया वो है अज्ञान, उसका और मोटा रूप आया तामसी अंश का, वो हो गया समझो कि अंधकार। तो नेत्रों का जो विषय है वो प्रकाश और अंधकार, दोनों अलग अलग। बुद्धि का जो विषय है वो अलग अलग, ज्ञान और अज्ञान। प्रकृति और पुरुष के साथ में मुकाबला, चेतन के साथ में जड़ और चेतन, तो जीवात्मा चेतन और प्रकृति जड़। जीवात्मा की जो बुद्धि है एक प्रकार से, उसमें दो चीज ज्ञान और अज्ञान। इसी तरह से थी हमारे नेत्र, उनके दो विषय अंधकार और प्रकाश। तो ये तीनों है जड़ है, और तीनों ही एक प्रकार से तमोगुण रूप है, जो अज्ञान है और प्रकृति का तम भाव है वो, और जो अंधकार है ये सब एक प्रकार से तमोगुण है। और क्रिया जो है बाहर की क्रिया, मन की क्रिया, और समझो कि प्रकृति के मां भी क्रिया होती रहे, तो ये तीनों क्रिया जो है सो रजोगुण से। और बुद्धि जो है, और समझो कि आपने चेतन जो आत्मा है, और बुद्धि जो है, और जो दृष्टि जो है, प्रकाश जो है, ये सब एक प्रकार से थी ये सतोगुण का समूह है। तो इस प्रकार से इनको समझ करके इनके परमाणुओं को विशेष रूप से थी विस्तार से समझने की जरूरत है, तब आपको मालूम हो जाएगा कि भी संघ का जो गुण और दोष किस तरह से ये संसार में है।
परमाणु की दृष्टि से परमात्मा, प्रकृति और महाभूतों का तात्विक विषय का निरूपण पूज्य श्री जयदयाल जी गोविंद का द्वारा मिति पौष कृष्णा तृतीया सम्मत 2013 तदनुसार तारीख 20 दिसंबर 1956 को प्रातःकाल 8 बजे सम्मान श्री घनश्याम दास जी जालान के घर पर साहेबगंज गोरखपुर में किया गया।
चंद्र की जय, मोर मुकुट बनू।